जय जन्माचार्य हरिदास ठाकुर की जय, सावत भक्तवृंद की जय, भिंडारी कृष्ण महारानी की जय, श्रीमद भागवत मंत्रराज की जय, निताय गौर विमानंदे हरि बोल। नाम श्रेष्ठा मनुमपी सचिपुत्रा मात्रा स्वरूपां रूपं विश्वग्रजं मरुपरिं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुंडा गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तजिष्यपरितकृतां श्रीगुरुं समनतो अस्मि। वांछाकलपतिरुभ्यस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्याविहीनाय अपराधलक्षैत्यादितमादितरङ्गमध्ये कृपामहीदं शरणं प्रपन्ने। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दां, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। आनन्दलीलामविग्रहाय हेमावतिद्वक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। सशुकनिवेदितास्तद्बुद्धस्तन्नभावपजितरुचिरिलाकृष्ट सारस्तदीयं गतनतु कृपां यस्तत्प्रदीपं पुराणं समकुलविजयिनं व्यससोऽनुनतो यस्मि। भवे भव यथा भक्तिपादस्तव जायते तथा पुरुषदेवेशनाथस्तं यथा प्रभुः। नाम सङ्कीर्तनं यश्च सर्वपापप्रणाशनं प्रणामं दुःखशमनस्तु तं नमामि हरि परम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरां चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टप्रैष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नाष्टके। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 11 अध्याय श्लोक नंबर 4। बाला ऊचु अनेना इति सिर्जा गतां उल्खलां विकीर्षतां मध्यगेनां पुरुषो अपि आचक्ष्महि। बाला ऊचुरनेति सिर्जागतमुल्खुलां विकृषता मध्यगेनां पुरुषा अवचक्ष्महि। बाला ऊचुरनेति सिर्जागतमुल्खुलां विकर्षता मध्यगेनां पुरुष अवचक्ष्महि। बाला ऊचुरनेति सिर्जागतमुल्खुलां विकीर्षता मध्यगेनां पुरुष अवचक्ष्महि। बोलो बालां सारे बालक ने ऊंचू कहा, अनेना उसके द्वारा, इति इस प्रकार, तिर्यक टेढ़ी, गतम हुई, उलखलम ओखली, विकर्षता कृष्ण द्वारा खींचे जाने से, मध्यगेना दोनों वृक्ष के बीच में जाकर, पुरुषो दो सुंदर व्यक्ति, ओपी भी आचक्ष्मही हमने अपनी आँखों से देखा है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तब सारे ग्वाल वाले ने कहा, इसे तो कृष्ण ने ही किया है, जब वो दो वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई, कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए, इसके बाद ही दोनों वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए, हमने इसे अपने आंखों से देखा है। तात्पर्य, कृष्ण के साथी कृष्ण के पिता को वह पाकर पूरी स्थिति बताना चाह रहे थे कि न केवल वृक्ष ही टूट कर गिरे अपितु इन टूटे वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए, उन्होंने बताया वो सारे बातें घटी है और हमने अपने आंखों से देखा है। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, वो जो कुछ भी देखता है सब कुछ एज इट इज बता देता है। वास्तव में भगवान कृष्ण का लीला अचिंत्य है, एग्रेसिव है, जो दही मथने के लिए वो कितना ज्यादा जड़ा होगा, पतला रस्सी, उसमें अगर किसी को खींचा भी जाए तो रस्सी टूट जाएगा। फिर जो उखली था वो भी यार कितना मोटा होगा, तो उससे इनको तीनों को बांधने के बांधा, उसको जब खींचा तो पेड़ गिर गया, लेकिन तीनों इसे कैसे रह गया, कृष्ण कमर भी बांधा रह गया, रस्सी भी आखा रह गया और उखली भी बांधा हो रह गया, लेकिन पेड़ गिर गया। तो भगवान का अचिंत्य शक्ति इससे ज्ञात होता है, ये भगवान का जो लीला शक्ति है वो लीला शक्ति जिस धाम में जिस प्रकार से जैसे लीला करना भगवान चाहते हैं उसी का समाधान लीला शक्ति करते हैं। लीला शक्ति का अपर नाम है इच्छा शक्ति, जो भी इच्छा करेगा उस इच्छा शक्ति को उस शक्ति ने पूरा करेगा। यहाँ बालक ने जो देखा वही वो लोग वर्णन किया, पेड़ गिरा, पेड़ गिरने के बाद दो जो नलकुबरा मणिगिरी बाहर आए, उन्होंने भगवान का स्तुति किया और स्तुति करने के बाद वो लोग चला गया, बाद में सब आ रहा है। अभी थोड़ा सा भी कोई आवाज होगा तो हम लोग तुरंत बाहर निकल जाते हैं, आज तुरंत देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना सारे घटना घटने के बाद ब्रजवासी वहां आया, इतना समय था, अभी इसको निकलना पड़ेगा तो स्तुति करना पड़ेगा, इतना सारा श्लोक बोला, फिर उनका आशीर्वाद अभिवादन क्या क्या नहीं हुआ, तो तब तक वो लोग घर में रह गया। ये सब जो लीला जो संगठित हुआ इस लीला को ब्रजवासी देख नहीं पाया, क्यों नहीं देख पाया, क्योंकि चैतन्य चरित कहते हैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति, ब्रजवासी का सन्मुख में अगर एक घटना होगा तो कृष्ण स्वयं भगवान है वा कोई है, ठीक है, इतना ही बच्चा इनको गिरा दिया तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये जो ऐश्वर्य भाव है, इस ऐश्वर्य भाव के द्वारा ब्रजवासी आच्छादित तो हो जाएगा, अगर ऐश्वर्य भाव में ब्रजवासी आच्छादित तो हो गया तो ब्रज के जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने ब्रज में आए हैं उस उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए ये सब चीज ब्रजवासी को दिखाई नहीं दिया। वो लोग इनको क्या माना, कोई भूत आके पार्टी करके चला गया, चलो अभी भूत को निराकरण करने के लिए भगवान का या कृष्ण का निराजन करना चाहिए, बाद में ईशाद्वार लिप के भगवान का निराजन करेगा। ये जो है सारे घटना भगवान का अभिचंत ईश्वर लीला जो तर्कात जो है उस लीला का उन्होंने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिस लीला का श्रवण के द्वारा क्या होगा, ब्रजवासी का जो भाव है, इस भाव में जाकर के कृष्ण का भजन करेगा। साधारण तो जीव कृष्ण भजन करने का योग्य नहीं है, उनको अवतार बोली का भजन करना पड़ता है। कृष्ण का जो अवतार है उनको भजन करना पड़ता है, क्योंकि प्राकृत शरीर के द्वारा ब्रज भजन नहीं होता है। ब्रज भजन करने के लिए ब्रजवासी का अनुगत होकर के भजन करना पड़ेगा, तभी जाके ब्रज का कृष्ण मिल सकता है। नहीं तो वासुदेव तत्व तानी गाता विमुच्यते। जो व्यक्ति विष्णु का तीन तत्व जानेगा, कारण गर्भ और खीर, इस तीनों को तत्व को जो जानता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। विष्णु तत्व का जानने का बाद विष्णु का जाकर वस्तु जो है उनको पास जाया जा सकता है। इसे ब्रज लीला सुनने से इसलिए कहा है नारद जी को ब्रह्मा ने, मैंने जो श्रीमद् भागवतम तुमको सुनाया, इसको इस प्रकार वर्णन करना जिस वर्णन के द्वारा लोगों का कृष्ण में रुचि हो। भक्ति रुत्पद्धते पुंस शोको मह मयाभ्या। ये कृष्ण लीला का श्रवण कीर्तन करने के द्वारा भगवान कृष्ण में भक्ति लाभ होगा। लेकिन अगर कोई पांडित्य के लिए इसको अध्ययन करता है तो नहीं हो सकता है। एकमात्र जितना सारे भक्त्यांग है वो भगवान के संतुष्ट विधान करने के लिए करना चाहिए। ये जो कृष्ण लीला का हम लोग श्रवण करते हैं, इस कृष्ण लीला का श्रवण का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए ये कृष्ण में प्रीति, जो अविष्ट चित्त होकर के कृष्ण कथा का सुनना चाहिए। तो अभी आज हम लोग अगला बार हुआ था क्या सांख्य योग, आज होगा सुप्रीम कोर्ट। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ब्रज का मंजरी था, उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर प्रबंध लिखे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति को सत्य और असत्य के बारे में ज्ञान होगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे विचारपति रहते हैं जज, उसमें से एक हेड होता है, बाकी उनका असिस्टेंट होता है। कभी कभी विचार करने के लिए एक बेंच में तीन चार जज को बैठना पड़ता है। बाबरी मस्जिद का ये देने के लिए छह जज बैठा था उसको विचार जजमेंट देने के लिए। इसका किसके अंडर में है, मुझे मुस्लिम का है कि हिंदू का है, तो पूरा खुदाई खुदाई करके जब लास्ट में देखा सब हिंदू का समान मिल रहा है, तो उनको डिसीजन देना पड़ा ये हिंदू के लिए ही है, मुसलमान का नहीं है। तो छह व्यक्ति मिलके वो जज दिया था, क्योंकि एक व्यक्ति बड़ा सपोर्ट कर रहा है। इसी प्रकार ये जो विचारपति है, सबसे बड़ा जज कौन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बोली व्यासज्ञ जमराज, ये द्वादश महाजन इस सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा विचारपति है। इसलिए कहते क्या कहते हैं भक्ति रंग सिंधु में, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्म विधि बिना ऐकांतिक हरि भक्ति उत्पात एव केवलम। शास्त्र बहिर्भूत जो हरि भक्ति है जगत का उत्पात का कारण बनता है। ये शास्त्र उल्लंघन करके हरि भजन नहीं होता है। अभी इनमें वादी और विवादी कौन है, जो क्या बोलते उसको एप्लीकेशन करता है दरखास्त, ये वस्तु ये नहीं है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है तो हर कोई पिटीशन डाल दिया जाता है इलेक्शन कमीशनों के पास, उसी प्रकार ये साधारण मानव हरिभक्ति करने का जरूरी नहीं है, इस प्रकार उसमें उस अदालत में एप्लीकेशन डाला। जो हरि भजन करने का क्या जरूरी है, ऋणंग किच्चा घीतंग प्रिवत जावत जीवेत सुखंग जीवेत, कितना जिएगा सुख से जिएंगे, ऋण करके घी पिएगा, वैष्णव लोग क्या कहते हैं, यथा यज्ञ आहारे पर ही उदर भरण, जो मिल गया तो उदर भरण लागी। और पापी लोग क्या कहते हैं, उदर भरण लागी एवे पापी साहब, बोलाए रघुनाथ मुड़े जरद गव, कहते भागवत तत्व लोग। तो पापी लोग मुंह में क्या बोलता है, मैं रघुनाथ हूं, असल में जरद गव है, जरद गव मतलब एकदम थर्ड क्लास, उसको जरद गव कहते हैं। न जुआ है न वृद्ध है, बीच का अवस्था जरद गव कहते हैं। ये लोग एप्लीकेशन डाल दिया जो भजन करने का कोई जरूरी नहीं है, और ओपोजिट साइड गौड़ियों, गौड़ी लोग क्या कहते हैं, एमन दुर्लभ मानव जन्म पाइया किकर भावना केह, एवे ना भोजिले यशोदा सुत चरमे पड़िबे लाजे। ये गौड़ियों कह रहे हैं, और साधारण मानव लोग कहते हैं क्या, भजन करने का कोई जरूरी नहीं, आराम से विषय सुख भोग गो, क्या बोलते हैं, हम लोग सब सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी कौन होता है, जो सूर्य उदय होने से पहले उठता है उसको कहते हैं सूर्यवंशी, आज जो सूर्य उदय होने के बाद उठता है वो, तो आज हम लोग सब कहते सब हम लोग सूर्यवंशी है, सूर्य उठने के बाद हम लोग उठेगा, कोई पहले दादाजी उठे फिर बाद में हम लोग उठेंगे, क्योंकि हम लोग सूर्यवंशी है। अभी तो सूर्य उठा नहीं था, अभी क्यों उठू, अभी देखो ज्यादातर लोग जो दीक्षा वगैरह लिया उसके बाद छोड़ दो, बाकी ज्यादातर लोग सूर्य उठने के बाद ही उठता है, वो लोग का कहना है, हम लोग तो सूर्यवंशी है, हमारा दादा परदादा उठे उसका बाद हम लोग उठेंगे। ये है वादी और विवादी गौड़ियों बनाम साधारण मानव का एप्लीकेशन। ये लोग कहते हैं एमन दुर्लभ मानव जय हो, ये लोग बोलते हैं मानव शरीर मिला है इसको भोग करने के लिए मिला, जब तक जिएंगे भोग करके मर जाएंगे, मरने के बाद किसने देखा क्या हुआ, किसने देखा नहीं। और ये लोग कह रहे हैं, गौड़ियों कहते हैं एमन दुर्लभ मानव दे हो पाइया की कर भावना के हो, एवे ना भोजिले जो सदा सु चरम में पड़ी बेला, इतना सुंदर मानव शरीर मिला, अगर यशोदा नंदन को भजन नहीं करोगे तो तुम्हें शरम आना चाहिए। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। ये है दोनों का एप्लीकेशन। नालिश क्या दिया है, तकलीफ क्या है, इलों के गोड़ियों क्या करते हैं, अन्ना है नायक विभोग नहीं, मनुष्य का काय मौन वाक्य में भेद स्थापन करता है, कितना बड़ा एप्लीकेशन है, काय मौन वाक्य को अगर भेद स्थापन करता है, क्या बोलते अभी पढ़ाई करके क्या करोगे, मंदिर में ब्रह्मचर्य के भजन करो ना, क्या जरूरी पढ़ के क्या करना है, जड़ विद्या से तो माया रो वैभव जीव के करे गाधा, जाके कॉलेज में जाके ऐसे गोरी लोग प्रचार करता है, क्या आप लोग अगला जन्म में गाधा बनना तो पढ़ाई करो, तो मानव में भेद उत्पन्न करता है, अरे संसार में क्या रखा है, संसार में कुछ नहीं, संसार छोड़ के मंदिर में आ जाओ, ये भी एक भेद है, अरे कितना माँ हुआ कितना बाप हुआ क्या कर रहा है, माँ बाप का पीछे पड़ के क्या कर रहे हो, वही भजन करो, ये भी एक भेद हुआ। पोती को कहते हैं ये तुम्हारा पत्नी जो भी है अभी तुम हरि भजन नहीं करोगे पत्नी का पीछे भाग के क्या करने वाला है, ये भी एक भेद कर रहे हैं। पत्नी भी ऐसे सिक्का दे रहे हैं, प्रभु जी आप भजन क्यों नहीं करते हो, सब लोग मंदिर में जाके ईश्वर में भजन करते, आप यहीं बैठ के टीवी देख रहे हो, ये भी भेद उत्पन्न कर, इतना सब एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। और इसका क्षतिपूरण मानहानि करते हैं ना, 5 करोड़ का मानहानि कर दिया, अभी आपको 5 करोड़ देना पड़ेगा, इसलिए कोई क्षतिपूरण का नालिश किया। तो ये लोग की जो एप्लीकेशन दिया है उनका बैरिस्टर कौन कौन है, ईश्वर कृष्ण भगवान नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति है, बैरिस्टर का वशिष्ठ दूसरा किया मैंने, वशिष्ठ शक्ति पराशर दत्तात्रेय अष्टवक्र दुर्वासा मुनि, ये इनका बैरिस्टर सपोर्ट करने वाला ये लोग, और वकील कौन है? ईश्वर कृष्ण, गौरपाद, गोविंद, शंकराचार्य, विद्यारण्य, सदानंद जोगींद्र, आनंदगिरी, मधुसूदन सरस्वती, स्वप्नेश्वर, विज्ञान भिक्षु, शेषनाथ, वाचस्पति मिश्र, ये इनका वकील है। और मुख्तार वो कौन है? कुल्लुक भट्ट, उदयन आचार्य, श्रीधर मिश्र, कुमारिल भट्ट, रघुनंदन सात रघुनंदन, कमलाकर और हलाउद, ये इनका मुख्तार है। ये हो गया जो वादी का जो एप्लीकेशन देने वाला है उनका ग्रुप। अब विदादी लोग जो है, जो गोरी लोग है, इनका वकील कौन कौन है? बैरिस्टर ऋषभ देव, नव जोगेंद्र, प्राचीन ब्रही, उनका पुत्र दस प्रचेता, ध्रुव, पृथु, मैत्रेय, उद्धव, ये इनका है। वकील कौन कौन है? रामानुज, माधवाचार्य, निम्बादित्य, विष्णु स्वामी, वेदांत देशिकाचार्य, जयतीर्थ, श्रीनिवास, सिद्धर स्वामी, बिल्वमंगल, जयदेव, वल्लभाचार्य, श्री जीव गोस्वामी, बलदेव, ये इनका है। मुख्तार कौन कौन है? कृष्णदेव, गोपाल भट्ट, ध्यानचंद्र, कृष्णदास, गोपीनाथ दास। जब जजमेंट होगा तो क्या होगा? ये साक्षी का तालिका लेकर के जो विटनेस और वादी और विवादी उभय व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार बैरिस्टर, वकील, मुख्तार नियोग व वर्जन कर सकते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट इनका भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो विचार प्रणाली। तो इस विचार में हमें क्या लाभ होता है? ये जो ये दिया है इस प्रबंध गौड़ीय नवम खंड नवम वर्ष सप्तम भाग में नौ इसी में दिया गया है पेज में। तो ये सब जो दिया का अर्थ क्या है, इससे हमें क्या जानकारी मिलेगा? शायद किसी व्यक्ति इसके बारे में तो समझ में नहीं पाएगा ये सब क्या बोल के क्या है। वास्तव में हमें ये सब चीज जो जानकारी, ये सब का किताब हमें नहीं पढ़ना चाहिए और ये सब का किताब हमें पढ़ना चाहिए। ये लोग जो मतवाद देते हैं, जैसे अष्टवक्र, दत्तात्रेय, दुर्वासा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर इत्यादि इत्यादि जो है, इनका जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य कर्म मिश्र भक्ति है। बाकी सब कोई कर्म मिश्र, कोई ज्ञान मिश्र, कोई पंचोपासक, इसलिए उससे हमें दूर रह करके हमें सब शास्त्र का आलोचना के द्वारा, सब वैष्णव का स्मरण के द्वारा हमें हरि भजन करना चाहिए। ये उन्होंने अच्छी तरीके से विचार करके सबको समझाया। ये है सुप्रीम कोर्ट का विचार प्रणाली। अभी ये जो विचार प्रणाली है, शास्त्र क्या कहते हैं? नामेक जैश वाची शरणपथ गतं श्रुतमूलं गतं वाशुद्धं वाशुद्धवर्णं व्यवहित रहितं तारित्य सत्यं तच्च देह द्रविण जनता लोभोपासनर मध्ये निक्षिप्त सान्न फलजनक शीघ्रमेवात्र विप्र। हे विप्र, हे ब्राह्मण, नामेक जैश वाची, नामेक एक ही नाम, ज्यादा नहीं, एक ही नाम जिन्होंने उच्चारण किया वाच्य, शरण पथ जिसने शरण किया, स्रोत मूलक जिन्होंने श्रवण किया, गत जो तीनों काम किया है, बा शुद्धं बा शुद्ध वर्णं, चाहे शुद्ध वर्ण शुद्ध हो बा अशुद्ध हो, चाहे कृष्ण कहे, चाहे कृष्ण कहे, चाहे कृष्ण कहे, इसमें पोस्टर टंगा हुआ देखना, कृष्णो लिखा हुआ है, वह कृष्ण शब्द नहीं है। कैसे भी कुछ भी क्यों ना करे, शुद्ध वर्ण हो चाहे अशुद्ध हो, कोई विष्णवे नम, कोई विष्णाय नम, व्यवहित रहितम, हो गया, बीच में कुछ और लगा, फिर लास्ट में राम बोला, बीच में क्या हो गया? व्यवहित तो हो गया, वाह री, ह और री के बीच में दूसरा शब्द डाल देना, क्या इसको बोलते हैं व्यवहित तो। जो वासुद्ध व्यवहित रहित हम तारा तो सत्यम। अगर शुद्ध हो अशुद्ध हो व्यवहित रहित हो तो एक नाम कोई श्रवण किया कोई शरण किया वा उच्चारण किया उस नाम उसको अवश्य ही उद्धार करेगा। लेकिन उद्धार कब नहीं करेगा? तच्च देह द्रविण जनता लोभ पाखंड मध्य। अगर वो नाम, मैं शास्त्र बोलूंगा, किसी का दुख नहीं होना चाहिए कि दुख होगा तो शास्त्र बोलना भारी है। निरपेक्ष नहीं ले धर्म रक्षण ना जाए। जब तक निरपेक्ष नहीं बनोगे तब तक प्रचार कार्य नहीं हो सकता है वा तब तक हरिभजन नहीं होता है। एक ख्याल रखो, लोगों को संतुष्टि करने जाओगे जिंदगी में संसार पार नहीं हो सकते हो। अगर भगवान का संतुष्ट विधान करोगे तो एक नाम में उद्धार हो जाओगे। और लोगों को संतुष्ट करने जाओगे करोड़ों नाम लोगे कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए कहें तच्च देह, देह के लिए जैसे इसमें दिया है, चलो मिलिए देह के लिए। अगर तच्च देह शरीर को बचाने के लिए अगर नाम उच्चारण किया जाता है, द्रवीण, द्रवीण मतलब कृपण, जनता लोकरंजन, लोभ किसी लालच के द्वारा हरि कीर्तन किया जाता है, बोलो तो उनका घर में हरि कीर्तन करेगा 100 रुपये मिलेगा, इसको बोलते हैं लोभ। वो व्यक्ति मर गया उसका घर में कीर्तन करेंगे वो वैष्णव नहीं है, इसको बोलता है मार्दंगिक, मार्दंगिक वैष्णव, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भाषा। कोई लोग मरता है उनका घर में जाके मृदंग करता लेके कीर्तन करके आता है ये वैष्णव का कृत्य नहीं है, इसको बोलते हैं मार्दंगिक वैष्णव। और लो पाषंड दुष्ट बुद्धि दुर्योधन, वो दुर्योधन का काम है। लोभ पाषंड मध्य निक्षिप्त, अगर हरिनाम उस उद्देश्य से किया गया सान न फलजनक, वो कभी हरिनाम में प्रेम उच्चारण नहीं होगा। शीघ्र में मात्र विप्र, जब ये सब तीनों चीज चला जाएगा, जैसे कलकत्ता में प्लेग हुआ था, कब, जो भक्ति ठाकुर था तो प्लेग के लिए पूरा कलकत्ता हरिनाम संकीर्तन करने के लिए बोला था, जो मड़क चला जाएगा हरि कीर्तन करो, तो हर जगह में सब कीर्तन या लोग हरि कीर्तन करने लगा, पूरा कलकत्ता हरि कीर्तन करने लगा। तो गोरी में भक्ति ठाकुर कहा जो हरिनाम के द्वारा प्लेग निर्मूल नहीं किया जा सकता है, अगर हम प्लेग निर्मूल कर लेंगे हरिनाम का उच्चारण करते हैं तो हरिनाम नहीं होता है। हमारा उद्देश्य हरिनाम का कृष्ण का प्रीति साधन, तो नाम ही वास्तविक नाम ही क्या, अब ये नाम ही का शब्द हम लोग कहां जाएंगे, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पंचदश परिच्छेद में जाएंगे, वहां क्या लिखता है, तबे रामानंदार सत्यराज खान प्रभुर चरणे किछु कइल निवेदन, गृहस्थ विषय आमी किमोर साधने सिमुखे करेन आज्ञा निवेदी चरणे। रथयात्रा हो गया, सब गौरी विदाई लेगा महाप्रभु से, उस समय सत्यराज खान और रामानंद बसु जाके महाप्रभु को पूछ रहे हैं, जहां से गृहस्थ है विषयी हूं, हमारा साधन क्या है, हम कैसे इस संसार से उद्धार हो सकते हैं। अगर अपना मुंह से कहोगे तो हम उसको फॉलो करेंगे। इसलिए कहते हैं चैतन्य चंद्र दया करो विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार, हम सब गृहस्थ है, ये हमारे लिए उपदेश है, आगे के लिए उपदेश अलग बाद में बताऊंगा। प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। गृहस्थ क्या सेवा है, कृष्ण सेवा, घर में शालग्राम रखो, शालग्राम रखने क्यों बोलते हैं, हम तो जो भी क्लास देते हैं हम बोलते हैं सालग्राम रखो, बाकी ठाकुर जी को रखने के लिए क्यों मना कर, बोलते क्यों नहीं, कारण क्या है? विग्रह सेवा समय, सालग्राम भी विग्रह है, विग्रह सेवा समय सापेक्ष है। इसका वस्त्र लाओ, अलंकार लाओ, पिन्हाओ, बहुत समय लगेगा। अगर सालग्राम जी को रखोगे एक तुलसी नीचे एक तुलसी ऊपर एक ग्लास पानी, आप उसमें सोना का जनोई सोना का चैन लगा सकते हो, माना नहीं है। उपवित जो अलंकार वो गोल्ड का दे सकते हो, कोई माना नहीं। और दूसरा, सालग्राम को प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है, सालग्राम में सदा सर्वदा शिहोरी विराजित तो है। तो बाकी जितना मूर्तियां बना के ला के पूजा करोगे, जब तक सही तरीका से उनका प्रतिष्ठा नहीं करोगे तब तक वो आपको फल देने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं सालग्राम रखो, क्योंकि आपको प्रतिष्ठा का झंझट नहीं है। आप प्रतिष्ठा करने के लिए उपयुक्त तो ब्राह्मण को भी बुलाना पड़ेगा, वो ब्राह्मण आकर के उसका संस्कार क्या क्या है, फिर हवन करके उनका क्या क्या करना पड़ता है, उसको जानकारी नहीं है तो खाली चुए करके आ जाएगा तो नहीं होगा। फिर उस ब्राह्मण का आपको दक्षिणा भी देना पड़े, एक मुसीबत है। फिर हवन करो, ये सब बहुत धरे है। इससे अच्छा सालग्राम रखो, कोई झंझट ही नहीं है, न हवन करने का जरूरी है, न शुद्धिकरण का जरूरी है, न कुछ करने का आवश्यक है, सब कुछ। छप्पन भोग लगा कौन मना कर रहा है, 64 प्रकार का लगाओ, 64 प्रकार का सालग्राम में सेवा करो, कोई ऐतराज नहीं है। मूर्ति सेवा में अंतराय है, क्या अंतराय है, किस मूर्ति को सेवा करना चाहिए वो भी जानकारी जरूरी है। हम किसको सेवा करेंगे, हम किसको सेवा नहीं करेंगे, राम का सेवा करेंगे, जगन्नाथ का सेवा करेंगे, गौर नीता का सेवा करेंगे, कि और कुछ ला के बड़ा के सेवा करेंगे, वो भी अधिकार अनुजाई होता है। कोई बोला हम गौर नीता के सेवा का अधिकार है कि नहीं, इसका कौन देखेगा, विचार कौन करेगा, गौर नीता का सेवा करने का अधिकार कौन है? बोलेगा पोचित पा, जितना पोचित है सबकी कर सकता है, नहीं कर सकता है, बहुत मगजमारी है इसमें। ये हम गृहस्थ हैं, हमारा पत्नी भी सेवा करेंगे, ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद पत्नी सालग्राम का सेवा कर सकता है, लेकिन जब तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं तब तक नहीं कर सकता है, यही बात है। इसलिए विग्रह रखने से पहले अच्छी तरीके से जिनके पास जानकारी है उनको जाकर पूछो, और पूछने के बाद ठाकुर जी को रखना चाहिए। तो हो गया कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा। वैष्णव, वैष्णव सेवा, अभी वैष्णव कौन है ये भी एक विचार जो विषय है, वो बाद में आऊंगा। और निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन, ये एकदम ईजी है। निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम होते हैं। नौ प्रकार का जो भक्ति है नाम के द्वारा हो जाता है, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम होते हैं। तो सहज है कि नहीं है? अगर हम सब गृहस्थ बोलेंगे काल से 64 माला के जॉब करेंगे ना शुरू करेंगे, ठाकुर जी का सेवा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वित्त सच्चो दोष में पतन हो जाएगा। गृहस्थ का कर्तव्य ठाकुर जी का सेवा करना। अगर अभी बाबा जी बनना चाहते हैं जो चलो अभी हम काल से नाम संकीर्तन करेंगे ठाकुर जी का सेवा माइनस कर देंगे तो वो वित्त सच्चो दोष में पतन हो जाएगा। अगर उसको ये करने की इच्छा है तो संसार छोड़ करके कोपिन खाँच करके मंदिर में आके सन्यास ले ले, ये विधि है। ये तो हम कर नहीं सकते हैं, हमको तो संसार में रहना ही पड़ेगा, तो हमारे लिए ठाकुर जी रहना ही पड़ेगा, ठाकुर जी के सेवा हमको करना ही पड़ेगा जब तक गृहस्थ में हूं। कोई जी आचार्य ठाकुर जी की सेवा करते थे, शिवास पंडित ठाकुर जी की सेवा करते थे, स्वयं सची माता उनका घर में सालग्राम और गोपाल था, ये हो गया निरंतर करो नाम संकीर्तन। गृहस्थों ने क्या क्या दिया? कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन। अभी कृष्ण सेवा नाम संकीर्तन नाम तो समझ गया, इसका कोई टेंशन नहीं। वैष्णव सेवा सत्यराज बोले वैष्णव चीनी वो केमोने के वैष्णव कहता सामान्य लक्षण है। बोलो वैष्णव कौन है, हम कैसे पहचानेंगे? तो थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन बताइए, ये वैष्णव है, ये वैष्णव है, ये ठीक है, ये नहीं है, हम उसको बुलाएंगे, हम घर में उसको खिलाएंगे। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक कृष्ण, जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से पूज्यो श्रेष्ठ सभाकार। कितना सुंदर दिया, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम, जिनका मुंह में एक बार भी कृष्ण नाम सुनता हूं वही पूज्य है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इसे आज्ञा बोला नामई को जैश्य वाची शरण पथम, नामई को एक नाम, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविदा भक्तिपूर्ण नाम होते हैं, दीक्षा पुरस्रिजा विधि अपेक्षा ना करे, जिहा पर से आचन डाले सवारे उद्धारे। नवविदा भक्तिपूर्ण नाम होते हैं, इसे बताया दीक्षा पुरस्रिजा विधि अपेक्षा ना करे, वो व्यक्ति दीक्षित तो हो चाहे दीक्षित तो ना हो, पुरस्तरिया किया कि ना किया मंत्र पुरस्कार करना पड़ता है। जिहा पर से आचन डाले सवारे उद्धारे, अगर कृष्ण नाम किसी का जिहा में पर्श हो गया, जैसे कृष्ण तो जिहा पर से हुआ, जिहा पर से आचन डाले सवारे उद्धारे, सबको उद्धार करेगा, लेकिन किसको नहीं करेगा? चत्ते देह द्रविण जनता लोभ पाचंड मध्य, इनको उद्धार नहीं करेगा, चाहे दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो। दीक्षा लेने का बाद भी अगर एक गुनावली उसमें है तो उनको उद्धार करने वाला नहीं है। आज दीक्षा नहीं लिया लेकिन इस गुनावली उसमें नहीं है तो उसको उद्धार करेगा, ये विचार है। अनुसंगे फले करे संसारे खाय, चित्त आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेमोदय। भक्ति विनोद ठाकुर इसका अमृत भाष्य में लिखते हैं, दीक्षा लेने का बाद भी अगर अपराध रहित तो होकर के कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करता है तो उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता है। कितना बड़ा बड़ा बात देते हैं। विश्वनाथ चकुरी ठाकुर षष्ठ स्कंध में सारार्थ दर्शनी टीका में लिखते हैं, गला में कंठी है, शिखा रखा है, ऊर्ध्वपुंड तिलक है, उसे हमें वैष्णव बोलना पड़ेगा, उसको तो अवैष्णव बोल नहीं सकता है, अभी सामंजस्य कैसे करोगे? ये दोनों का सामंजस्य कैसे होगा? एक ने कहा ये और एक ने कहा ये। क्योंकि इसमें वैष्णव का विभेद है कनिष्ठ मध्यम उत्तम करके, तो अभी आज नहीं जाएगा। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम से तो वैष्णव करिह तहार सम्मान, जो जिनका मुंह में एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण होता है वही वैष्णव है, उनको सम्मान करना चाहिए। अभी हम लोग समझ गया गृहस्थ कर्तव्य क्या है। आगे कहते हैं वैकुंठ नाम ग्रहणेन असहसे हग अरंगविदु, कहां पर है श्लोक? वैकुंठ नाम ग्रहणेन असहसे हग अरंगविदु षष्ठ स्कंद अजामिल अध्याय में है। वैकुंठ नाम यहां पर वैकुंठ नाम ग्रहण करने से समस्त अभव शब्द का अर्थ है पाप नष्ट हो जाता है। तो अभी यहां पर वैकुंठ शब्द आया है, वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? जहां पर कोई कुंठा नहीं है। तो वैकुंठ और कुंठ दो शब्द मिलते हैं हमको, तो कुंठा नाम और वैकुंठ नाम, तो नाम कितना हो गया? दो, एक कुंठा नाम एक वैकुंठ नाम। तो अगर हम कुंठा नाम का ग्रहण करें तो एक इंच भी हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुंठा नाम को ग्रहण करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस एक इंच भी नहीं होगा। अगर हम लोग अनंत काल से, मतलब कोई क्या बोल, अनंत काल कोई लिमिट नहीं है इसको, एक जन्म में करोड़ों करोड़ों जन्म तक अगर घिनी बजे, घिनी शब्द जानते हो, घिनी बजाई, घिनी शब्द करते है वो करताल, अनंत काल अगर हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे कुंठा नाम लेकर के, अभी कुंठा का विजय बाद में कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, घिनी बजाए चित्कार करे हरी बोल करते ना, चित्कार करे, उससे हम लोग का असुविधा कभी नहीं जा सकता, जो तकलीफ है कभी दूर नहीं हो सकता है। तो किसे कुंठा नाम कहते हैं, किसे वैकुंठ नाम कहते हैं, वो गुरुपाद पदों से श्रवण करना चाहिए। गुरुपाद पदों बताएंगे ये कुंठा नाम है अरे वैकुंठ नाम है। नाम प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म कहते हैं, जो नाम प्रापित इंद्रिय को द्वारा, सुनो नहीं तो समझ में नहीं आएगा, जो नाम प्रापित इंद्रिय के गाज्य होकर के शब्द का साथ शब्द का भेद उत्पन्न करता है उसे कुंठा नाम कहते हैं। दोबारा, जो नाम प्रापित इंद्रिय के द्वारा, नामाक्षर बाहिराय बठे शुद्ध नाम नहीं होय, प्रेम विवर्त जगदानंद पंडित, नाम उच्चर कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन वामन नाम उच्चर होता है लेकिन नाम नहीं होय, तो ये जो नाम उच्चारण करता है इस नाम उच्चारण का समय अगर शब्द का साथ शब्द क्या भेद दर्शन करता है तो उसे कहते हैं कुंठा नाम। कृष्ण अलग वस्तु है, कृष्ण नाम अलग वस्तु है, समझ में आ गया सर। भगवान निशिंग एक है, निशिंग नाम एक है, इसको बोलते हैं भेद दृष्टि। जो निशिंग है वो निशिंग विग्रह है, जो नारायण है वो नारायण स्वयं है। नाम में जो भेद दृष्टि करके जो नाम उच्चारित होता है उसको बोलता है कुंठा नाम। और विष्णु छोड़ के विष्णु शब्द का उच्चारण करना नहीं होना चाहिए। मायाधीश विष्णु और विष्णु माया रचित विश्व दोनों समान नहीं है। हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरि शब्द का अर्थ है मुसूर का डाल, एक अर्थ है। हरि शब्द का दूसरा अर्थ है लायन। हरि शब्द का तीसरा अर्थ है बांदर, जो यहां लिखा हुआ है, जो हरि आंकड़ी दिया ना वो आंकड़ी रंग है। इतना हरि शब्द में है। तो अगर जब हम कहते हरे कृष्ण तो किसी ने सोचा सिंह कृष्ण, किसी ने सोचा बांदर कृष्ण, किसी ने सोचा मुसूर गाल कृष्ण, हो गया ना गड़बड़। तो इस प्रकार अगर विचार आ जाए तो हरि शब्द का तात्पर्य उल्टा हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हम हरे कृष्ण करते हैं, महामंत्र जप कर रहे, साथ में हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, तो हरि शब्द का अर्थ कहां जा रहा है? हरि शब्द का अर्थ किधर जा रहा है? जब हरे कृष्ण कर रहे हैं माला लेकर के, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, हम मुंह में तो राम उच्चारण कर रहे हैं लेकिन मन में दूसरा कुछ चक्कर चल रहा है, तो भेद उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? नाम उच्चारण के साथ मन का जो चिंतन है उसमें भेद हो गया। तो इस प्रकार अगर हम अनंत काल पकड़ते करते रहे, इसको बोलता है घिनी बजा, अनंत काल बहुत डिफिकल्टी है। ये सब सूक्ष्म विचारधारा अगर नहीं जानेंगे तो हमारा उद्धार होना मुश्किल है, इसलिए सूक्ष्म विचारधारा में बोलना शुरू किया, एकदम बोलने वाला नहीं था। बोला चलो सर बहुत दिन हो गया, कब आया था 85 82 में इसको में आया था, 82 से 85 में इसको ने जान किया, अब तब से अगर ऐसे चक्कर में पूरा पूरा जीवन अगर बूढ़ा पा कर मर गया तो क्या लाभ होने वाला है, कुछ होने वाला है? तो कम से कम ये विचार प्रणाली जानेंगे, यार ये विचार प्रणाली का अगर कीर्तन करेंगे तो अनर्थ दुर्भूति होगा। भक्ति नगर कहते हैं ये सब कथा का जो कीर्तन करके अपर को सुनाता है वो व्यक्ति का अनर्थ दुर्भूत होता है, इनका ही वाणी है, इस लेक्चर के लास्ट में दिया गया है। बहुत दिन पहले पढ़ा था लेकिन हमको भी इसका व्याख्या नहीं किया था, दोबारा पढ़ना जो शुरू किया तब मैं इसका सुनाने का इनका इच्छा हुआ, बोले तो उसको अभी सुनाया जाए, कम से कम लोग तो जाने वस्तु क्या है। तो जब तक हरि शब्द का विचार में राधा मनोहर विचार नहीं आएगा, राधा मोहन का विचार नहीं आएगा, राधा गोपीनाथ का विचार नहीं आएगा, वा मदन मोहन का विचार नहीं आएगा, वा गिरिधारी का विचार नहीं आएगा, तब तक हरि शब्द का विकृत अर्थ हो जाएगा। और इस विकृत अर्थ के द्वारा क्या होगा, जिस चीज को हम अनुशीलन करते हैं, भक्ति रसम सिंधु का पहला श्लोक क्या है, अन्या विलासिता शून्य गान कर्मा धनाप्रीतम आनुकूल्यन, तो नारायण अनुशीलन क्यों नहीं बोला, विष्णु अनुशीलन क्यों नहीं बोला, माधव अनुशीलन क्यों नहीं बोला, निशिंग अनुशीलन क्यों नहीं बोला, वराह अनुशीलन क्यों नहीं बोला, बोलो ये लोग भगवान नहीं है, ये लोग भी तो भगवान है। अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन, अगर उत्तमा भक्ति करना चाहते हो, उत्तमा भक्ति अगर किसी को करना है तो उनका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण अनुशीलन, दूसरा कुछ भी अनुशीलन नहीं होना चाहिए। जितना सारे अवतार है, जितना सारे भगवान का नाम है, सब नाम कृष्ण में पर्यवेसित है, यह विचार होना चाहिए। राम एक भगवान है, कृष्ण या कृष्ण एक भगवान है, बड़ा एक भगवान है, तो भगवान का शक्ति हो जाएगा। एक ही भगवान का असंख्य रूप है, असंख्य अवतार है, असंख्य नाम है, नाम नाम कारी बहुधा बहुधा, बहुत नाम है। किसका नाम है, कृष्ण का ही नाम है। एक कृष्ण का बहुत सारे नाम है, तो जितना सारे नाम है सब नाम कृष्ण में पर्यवसित है, इसलिए कृष्ण अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है। जिस प्रकार जो व्यक्ति खेती में काम करता है तो खेती में आगाचा होता है, घास भी होता है और दूसरा धान भी होता है, पहले देखने में दोनों एक ही लगता है, अगर कोई घास को रख कर धान को उखाड़ दे तो उसको क्या मिलने वाला है, नहीं जो रियली जानकारी होता है क्या करता है, धान को रख को घास को निकालता है। इस प्रकार विचार जानना चाहिए, अगर धान को निकाल के घास को रख दिया तो सामा घास जो है पूरा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद जैसे हम लोग बीबीज में क्या कर हर साल करके निर्णय करते हैं, फिर भी उसका बिया गिरता है, फिर दूसरे साल वैसे का वैसे ही हो जाता है, फिर निर्णय करते हैं। तो उसी प्रकार खेती में क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, उसको निकालने के लिए बहुत समय लगेगा, तो निकालते निकालते बहुत समय लग जाएगा। इसलिए शकुंठ और वैकुंठ शब्द को अगर हम लोग पहचान नहीं पाते हैं तो हम लोग का दुर्गति का सीमा नहीं रहेगा। जूहरी जब तक मतलब जुहिलारी जब तक नहीं होता है तब तक पीतल को सोना बोल के खरीद कर लेगा और उससे कभी कोई लाभ नहीं हो सकता है। अभी शायद हम लोग को समझ में आ गया जो हम लोग को कैसे हरिनाम करना है, आज गृहस्थ को समझ में आ गया हमको किस प्रकार गृहस्थ वैष्णव अगर बनना है तो भी इसको भी उसको अपना क्या बोलता है, आपने उसी से चलना की कोशिश करना चाहिए। बोला हम सब गृहस्थ वैष्णव सभा बॉम्बे में इतना भाव है तो वैष्णव सभा हम लोग कैसे करेंगे। वही बोला हमारा संसार चला महीना में 15,000 भाड़ा देना पड़ता है रूम का, हम तो कहीं संसार चलाना भारी है, फिर हम किसी वैष्णव को घर में बुला करके कैसे भोजन कराएंगे। ये भी सही है, राम नहीं तो उसके लिए क्या विधि क्या है, कुछ तो विधि देना पड़ेगा ना। अगर बाई चांस घर में कोई वैष्णव आ गया उनको सत्कार करो, आइए प्रभु जी बैठिए एक गिलास पानी दे दो, वो भी सत्कार हो गया। जिनका घर में कुछ भी नहीं है वो बैठने के लिए एक आसन दे सकते हैं, अतिथि सेवा होता है, एक गिलास पानी दे सकता है, इसमें भी अतिथि सेवा होता है। अतिथि किसे कहते हैं, जिसका कोई तिथि नहीं है। तिथि शब्द का अर्थ क्या है, दिन नहीं है, भाई शनिवार को आएंगे शुक्रवार नहीं आएंगे, वो अतिथि नहीं है। अतिथि जिसका कोई तिथि नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो वैष्णव सभा का अर्थ है अगर घर में कोई वैष्णव आ जाए तो उनका सेवा करो। सामर्थ्य है तो वैष्णव बुला के सेवा करो, नहीं बहुत सारे वैष्णव का इकट्ठा करने से अपराध होता है। अभी चौचपंचड़ी में दिया गया है जहां पर महाप्रभु खिला रहे थे, बहुत सन्यासी यदि करी निमंत्रण तो सबको यथाधिक को सम्मान नहीं दिया जा सकता है, तो भी एक वैष्णव अपराध हो जाता है। ये बहुत सारे झंझटबाजी है। इसके सही सोल्यूशन क्या है भाई, खिसा में कुछ लाओ और या डोनेशन बॉक्स में डालते जाओ, आपका वैष्णव सेवा भी हो जाएगा और विग्रह सेवा भी हो जाएगा। इससे 100,000 क्या बता सकते हैं। ठाकुर जी का हुंडी में जो जाता है वो ठाकुर जी की सेवा होता है और वैष्णव का ही सेवा होता है। इतना सा कोई बाई चांस आके तो घर में सेवा करो, नहीं तो अपना खिसा में कुछ लाओ आ रहे यहाँ डालो, वैष्णव से हो गया ठाकुर जी का सेवा भी हो गया। नाम संकीर्तन मतलब माला तो है ही है, कितना आजी है। कोई झंझट भजन है हरिभजन में जो बोलता झंझट ना वो मूर्ख है। हरिभजन में इतना सहज वस्तु किधार भी नहीं मिलेगा, किधार भी नहीं मिलेगा। आपको नौकरी में जाने के लिए 3:30 बजे उठना पड़ता है, हरिभजन करने 3:30 बजे उठने कोई जरूरी नहीं है। आप वहां सुसु के भी हरिभजन कर सकते हो। हम लोग मंदिर में है, हम लोग गृहस्थ नहीं। मंदिर किस लिए आए हैं, भगवान का सुख साधन करने के लिए ना, कि गृहस्थ जैसे सुनने के लिए आए हैं। मंदिर के लिए अलग है, गृहस्थ के लिए अलग है। मंदिर का व्यक्ति का 24 घंटा का 24 घंटा एक्टिव रहना चाहिए कि उन्होंने किस लिए संसार त्याग किया, ठाकुर जी का सेवा संतुष्टि विधान के लिए त्याग किया। ये त्याग करने का फायदा क्या है, जरूरी क्या त्याग करने का, संसार त्याग भी इसमें संसार का झंझट से ठाकुर जी का झंझट करना, इसलिए तो संसार त्याग करके आए हैं। और फिर भी अगर हम संसार जैसे अगर आचरण करें तो हमारे त्याग का मतलब क्या रह जाएगा, आंसर मिल गया। ये है सिद्धांत तो। चलो बहुत कुछ बोल दिया, आप लोग भी अपना विचार करके हरिनाम करके संसार का आसक्ति दूर होना चाहिए। अगर संसार का आसक्ति वृद्धि होते रहता है तो हरिभजन करने से फायदा क्या होता है, कुछ फायदा नहीं होगा। वही कुल्लू का कहानी है ना, घूमते रहो मामा घुरावी कत कुलूर घानी बलदेर मत चोखे ठुली दिया मागो, ये रामप्रसाद संगीत है। चोखे ठुली आंख में पट्टी बांध दिया, आज बैर को घुमा रहा है, तो हम भी अगर आंख में पोटी बांध के संसार में जो घूमते रहे, हमारा पत्नी हमारा बच्चा हमारा संसार हमारा ये, तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हो कर्तव्य करते जाओ, कर्तव्य कर्म करने का हरि में ज्यादा प्रीति करने का, हरि और हरि संबंधी जो वस्तु है उनमें ज्यादा प्रीति करो, ताकि संसार में रहो अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ। ये नहीं बोला जाओ पत्नी को दो डंडा मारो, बच्चा को ये करो, ये करने का कोई कोई शास्त्र नहीं कहा है। प्रभुपाद जी ने कहा है کیا کہا میں یہ ملا تھا کیا بولتا ہے کیلنڈر ملا تھا دبئی سے آیا تھا وہ کیلنڈر ہمارے پاس غائب ہو گیا اس میں ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ جس کا گھر میں چھوٹا بچہ ہے اس کا کرتو بنتا ہے بچہ کا دیکھ بھال کرنے کا اس سے اگر بھگوان کا سیوا نہیں کر پاتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا ہاتھ سے کیلنڈر غائب ہو گیا ہرے کرشن
اس میں بہت کچھ ہے ہم لال کپڑا کیوں پہنوں